नमस्कार, आज हम एक बहुत ही विशेष पुस्तक माला पर बात करने वाले हैं। क्रांतिधर्मी साहित्य पुस्तक माला, ये वो पुस्तकें हैं जो 1988 से 1990 के बीच पूज्य गुरुदेव युग ऋषि वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने लिखी थी। और देखिए, हमारे पास जो जानकारी है वो सीधे पूज्य गुरुदेव के ही शब्दों से है। उन्होंने खुद बताया है कि ये साहित्य कितना अहम है, तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने इससे इतना असाधारण महत्व क्यों दिया। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पूज्य गुरुदेव ने इसे अपने अब तक के सभी साहित्य का मक्खन कहा है। ये अपने आप में कितनी बड़ी बात है। और उन्होंने ये भी साफ कहा कि इसको समझे बिना मिशन को समझना या समझाना संभव ही नहीं है।
बिल्कुल, और मक्खन कहने का मतलब सिर्फ सबसे अच्छा हिस्सा नहीं है शायद, बल्कि वो उस पूरे ज्ञान का आप कह सकते हैं सत्व है, निचोड़ है, जिससे असल ऊर्जा मिलती है, जैसे पिछले सारे लेखन से निकला हुआ एक बहुत शक्तिशाली तत्व। और उन्होंने तो इसे इस युग की युग गीता की संज्ञा दी। अब ये तुलना तो बहुत गहरी है।
ये अर्जुन का मोह भंग किया था,
हाँ।
क्या उस तरह से पूज्य गुरुदेव का क्या मतलब था इसे युग गीता कहने से?
हाँ, उनका आशय वही था कि जैसे गीता ने उस समय के मोह और भ्रम को दूर किया था, ठीक वैसे ही ये साहित्य इस युग के जो भटकाव हैं, चाहे वो सोच के हों या भावनाओं के, उनको दूर करने की क्षमता रखता है। ये दिखाता है कि वो विचारों की शक्ति को कितना निर्णायक मानते थे समाज की दिशा बदलने के लिए।
हाँ, और उन्होंने कहा भी तो है बहुत स्पष्ट रूप से, हमारी सारी शक्ति हमारे विचारों में समाहित है। दुनिया को हम पलट देने का जो दावा करते हैं वो सिद्धियों से नहीं, अपने सशक्त विचारों से करते हैं। कितना मतलब शक्तिशाली कथन है ये।
जी, और इसी विचार शक्ति के महत्व को उन्होंने एक और तरह से भी समझाया। उन्होंने कहा कि अगर उनके सारे पुराने साहित्य को तराजू के एक पड़ले पर रख दें और इस क्रांतिधर्मी साहित्य को दूसरे पड़ले पर, तो इनका मतलब क्रांतिधर्मी साहित्य का वजन ज्यादा होगा। अब ये सिर्फ वजन की बात नहीं है, है ना, ये असल में प्रभाव की, सार की, गहनता की बात है।
ये वाकई चौंकाने वाला है, खासकर जब उन्होंने गायत्री महाविज्ञान और प्रज्ञा पुराण जैसे अपने ही इतने स्थापित और महत्वपूर्ण ग्रंथों को भी मतलब फिलहाल अलग रखकर सिर्फ इन्हीं नई पुस्तकों को पढ़ने का निर्देश दे दिया। ये ग्रंथ तो उनके शिक्षण के आधार स्तंभ माने जाते थे, ऐसा क्यों किया उन्होंने?
हाँ, और यही बात इस पुस्तक माला की खासियत दिखाती है। उनके अनुसार ये पुस्तकें भविष्य के लिए थीं, उनके उत्तराधिकारियों के लिए वसीयत जैसी। इनमें सिर्फ ज्ञान नहीं था बल्कि जीवन को, चिंतन को बदलने के सूत्र थे। वो इन्हें सिर्फ पुस्तकें नहीं मानते थे, वो इन्हें क्रांति के बीज मानते थे कि ये बीज जब फैलेंगे तो दुनिया में एक वैचारिक धमाका करेंगे। और उन्होंने तो यहां तक कहा कि महाकाल ने स्वयं मेरी उंगलियां पकड़कर ये साहित्य लिखवाया है।
महाकाल ने, इसका क्या मतलब निकाले?
देखिए, यहां महाकाल का अर्थ शायद समय की जो दिव्य इच्छा होती है या वो ब्रह्मांडीय चेतना, उससे है कि ये लेखन एक विशेष उद्देश्य से हो रहा था जिसे वो शक्ति प्रेरित कर रही थी।
अच्छा, और इनके प्रसार पर भी उनका बहुत जोर था ना,
श्रवण कुमार वाला उदाहरण
जी,
कि जैसे श्रवण कुमार माता पिता को तीर्थ यात्रा पर ले गए थे
जी,
वैसे ही इन विचारों को दुनिया के कोने कोने तक, प्रत्येक गांव, प्रत्येक घर तक पहुंचाया जाए।
बिल्कुल,
उन्होंने तो संख्या तक बताई थी, ये 20 किताबें 100 बार पढ़ना और कम से कम 100 लोगों को पढ़ाना। 100 बार पढ़ना मतलब चिंतन गहरा हो, और 100 लोगों तक पहुंचाना ताकि विचार खूब फैलें। और सबसे जरूरी बात, उन्होंने इसे लागत मूल्य पर छापकर प्रचारित करने की सभी को खुली छूट दी। कोई कॉपीराइट नहीं रखा।
कोई कॉपीराइट नहीं?
जी हां, ताकि ज्ञान किसी एक का ना रहे, सबके लिए आसानी से उपलब्ध हो। ये मंशा एकदम साफ थी।
और वो एक और रूपक था उनका, आज तक हमने सूप पिलाया, अब क्रांतिधर्मी के रूप में भोजन करो। इसका क्या अर्थ है? क्या पहले का साहित्य मतलब कमतर था?
नहीं, कमतर नहीं, बल्कि अवस्था के अनुसार था, ऐसा कह सकते हैं। सूप जैसे शुरुआती पोषण होता है, हल्का होता है, भोजन ठोस होता है, संपूर्ण आहार जो असली शक्ति देता है। तो उनके अनुसार समय बदल गया था, और युग की जो नई चुनौतियां थीं उनका सामना करने के लिए अब इस ठोस भोजन की जरूरत थी, यानी इन क्रांतिधर्मी विचारों की, जो व्यक्ति और समाज में सक्रिय बदलाव ला सकें। उन्होंने वंदनीय माताजी से कहा, मेरा ज्ञान शरीर ही जीवित रहेगा, ज्ञान शरीर का प्रकाश जन जन के बीच में पहुंचना ही चाहिए। मेरे ज्ञान शरीर को मेरे क्रांति धर्मी साहित्य पुस्तक माला के रूप में जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करें।
ज्ञान शरीर,
हाँ, ज्ञान शरीर मतलब उनके विचारों और ज्ञान की वो विरासत जो भौतिक शरीर के न रहने पर भी जिंदा रहती है। और ये पुस्तकें जैसे 21वीं सदी बनाम उज्जवल भविष्य, युग की मांग प्रतिभा परिष्कार, सत्युग की वापसी, ये सब उसी ज्ञान शरीर का मूर्त रूप थी, एक तरह से व्यक्ति की सोच और समाज की दिशा बदलने का आह्वान।
तो सार ये निकलता है कि पूज्य गुरुदेव के लिए ये क्रांति धर्मी साहित्य पुस्तकमाला सिर्फ कुछ पुस्तकें नहीं थी, ये उनके जीवन भर के चिंतन का निचोड़ था, उनके ज्ञान शरीर का प्रकट रूप था और आने वाले समय में एक सकारात्मक बदलाव लाने का एक बहुत शक्तिशाली माध्यम था।
बिल्कुल सही। और ये बात सोचने पर मजबूर करती है कि कोई विचारक अपने लेखन को अपने भौतिक शरीर से भी ज्यादा स्थायी और प्रभावशाली कैसे मान सकता है। पूज्य गुरुदेव के लिए ये पुस्तकें सिर्फ पढ़ने की चीज नहीं थी, बल्कि ये तो जीवन में उतारकर क्रांति लाने का एक निमंत्रण थे। और इससे ये सवाल मन में आता है कि क्या विचारों में सचमुच इतनी शक्ति होती है कि वो दुनिया को बदल सके, जैसा पूज्य गुरुदेव का दृढ़ विश्वास था।
वाकई इसी गहरे प्रश्न और विचार के साथ आज की ये चर्चा हम यहीं समाप्त करते हैं।